हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के 20 और 21 श्लोक पर चर्चा करेंगे और ये श्लोक आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, आप मेरे साथ साथ इसे दोहरा सकते हैं।
एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम् एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः। अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्र मग्नः। तम अक्षरं ब्रह्म परं परेशं अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्मं इवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की एकांतिनः अनन्य भक्त जिन्होंने कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, यस्य जिस भगवान का न नहीं कंचन कुछ अर्थम आशीष वांछन्ति इच्छा करते हैं, ये जो भक्त वह निस्संदेह भगवत प्रपन्नः भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत। अति अद्भुतम जो अद्भुत हैं, तत्चरितम भगवान के कार्यकलाप, सुमंगलम तथा जो सुनने में अत्यंत शुभ हैं, गायंतः कीर्तन तथा श्रवण द्वारा आनंद दिव्य आनंद रूपी समुद्र समुद्र में मग्नः डूबे हुए तम उनको अक्षरम अक्षर भ्रम भ्रम परम दिव्य परम ईशम परम पुरुषों के स्वामी को अव्यक्तम अदृश्य अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव ना किए जा सकते सकने वाले आध्यात्मिक दिव्य योग भक्ति योग द्वारा गम्यम प्राप्य भक्त्या माम अभिजानाति। अति इंद्रियम भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे सूक्ष्मम सूक्ष्म इव सदृश्य अति दूरम अत्यंत दूर अनंतम असीम आगम आदि कारणों को परिपूर्णम सर्वतः पूर्ण ईडे मैं नमस्कार करता हूं। अनुवाद मेरे साथ साथ दोहराइएगा। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ। अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्म, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं, और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल ये न कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थिति वश अविलंबत वह मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है, वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहां किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप से भाव विभोर होकर कीर्तन श्रवण तथा नृत्य के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा, आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित ना हो, तब तक वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेका अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबों को प्रदान किया है, उन पतित आत्माओं तक को जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावना भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतः भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्या हम एक या ग्रहया, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मई आसक्त मनः पार्था योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् श्रृणु। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्णतया भावित होकर योगाभ्यास करने और मन को मुझमें अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावना मृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो बहुत ही रुचिपूर्ण प्रसंग ये चल रहा है, गजेंद्र प्रेयर्स ऑफ सरेंडर ना। गजेंद्र शरणागत भाव से भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जब इस स्टोरी को सुनते हैं, इस कथा को सुनते हैं, तो उनका इस स्टोरी पे विश्वास नहीं होता, कथा पे विश्वास नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ये सेम स्टोरी हम एक आईवीएफ की क्लास में ले रहे थे, तो बाद में एक लड़का के प्रश्न पूछता है, प्रभु जी क्या ये सच है? सच में है ना, एक हाथी कैसे प्रार्थना कर सकता है? कमाल की बात है, व्यक्ति से नहीं निकल रही। वो कहता मैं भगवान के सामने आता, मेरे से प्रार्थना नहीं निकलती, आप कह रहे हो हाथी प्रार्थना कर रहा था। तो समाज की स्थिति थोड़ी उल्टी है आजकल। लोग शक्तिमान पे विश्वास करते हैं, सुपरमैन पे विश्वास करते हैं, बैटमैन पे विश्वास करते हैं, स्पाइडरमैन पे विश्वास करते हैं, पर जो असली शक्तिमान है भगवान, उन पे किसी का कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो कथा है, ये अगर श्रद्धा से नहीं सुनी जाएगी तो इसका फल नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ एक स्टोरी फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि ये भागवतम की जो पुस्तक है, भागवतम पुस्तक है, ये भक्तों के लिए केस स्टडी है, जिससे हम ये समझ सकते हैं पढ़ के कि एक भक्त के जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो अच्छी हो, विपरीत हो, या किसी प्रकार की परिस्थिति हो, एक भक्त कैसे एक्ट करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो गजेंद्र की यहां पर जो स्टोरी आ रही है, हम स्टोरी को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हर वक्त आके स्टोरी ही बताते हैं। तो जो गजेंद्र था बहुत ही खुश था, है ना, बहुत ही खुश था हथनियों के साथ ना, बहुत ही हैप्पी सिचुएशन थी, बहुत ही मस्ती में था, है ना। बताया जाता है जब ब्रज में भगवान कृष्ण भी चलते हैं तो बताया जाता है जैसे हाथी चलता है वैसे चलते हैं, है ना, एक डिफरेंट फॉर्म होता है भगवान के चलने का, एक अलग ही तरीके से चलते हैं जैसे हाथी चलता है। तो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही खुश जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, पर अचानक क्या हो गया, उस मगरमच्छ ने पांव पकड़। तो ये जब भक्तों के जीवन में ये संकट आता है ना, बताया जाता है मिजरीज आर लाइक वेकअप कॉल्स, ये जो दुख का समय होता है एक वेकअप कॉल की तरह है ना। सुबह सुबह भी जब अलार्म बजता है तो हमें पसंद नहीं आता, है ना, अब उठना पड़ेगा, है ना, अब मंदिर जाना पड़ेगा, है ना, तो पसंद नहीं आता। पर ये जो वेकअप कॉल है, ये हमारे जो कंप्लीसेंट नेचर है, जो हमारा आलस का जीवन है, जो हमारा ढीलापन है, उससे हमें बाहर निकाल लेता है। कभी कभी भक्त लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने सिचुएशंस में, उसी प्रकार से हाथी भी था। इमेजिन कीजिए, अगर ये इस मगरमच्छ ने अगर हाथी को नहीं तंग किया होता तो क्या ये मगरमच्छ, क्या ये हाथी भगवान की स्तुति करता? कभी भी नहीं करता। क्यों करता वो भगवान की स्तुति? कोई कारण नहीं था भगवान की स्तुति करने के लिए। उसने भगवान की स्तुति इसलिए की, प्रार्थना इसलिए की, भगवान को इसलिए पुकारा क्योंकि उसके जीवन में एक संकट आया। तो कभी कभी एक भक्त के जीवन में कुछ रोमांच लाने के लिए, उस भक्त को उसकी पोजीशन से बाहर निकालने के लिए, जब वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, भगवान उसके लाइफ में स्पाइस लाते हैं, है ना, कुछ मिजरीज लाते हैं, कुछ दुख लाते हैं, है ना, ताकि अपनी पोजीशन से बाहर निकले, जिससे बहुत असक्त हो गया है। तो भगवान इसलिए स्थिति लाते हैं अपने भक्त के जीवन में, ताकि वो मिश्रित भक्ति से अनएलॉयड डिवोशन, जैसे यहां पर बताया गया, किसी प्रकार की और कोई इच्छा ना होना। कभी कभी हम भक्ति करते हैं, कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, अधिकांश हम लोग भक्ति करते हैं, पर किसी ना किसी इच्छा के साथ होती है भक्ति, अनएलॉयड डिवोशन नहीं होती, अनन्य भक्ति नहीं होती। अन्य काफी इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम भक्ति कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, थर्ड कैंटो 29 चैप्टर में, कपिल भगवान जब देवहूति माता को, अपनी माता को जब सुना रहे हैं भक्ति के बारे में, तो तीन प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, भक्ति इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण की भक्ति, रजोगुण की भक्ति और सतोगुण की भक्ति, श्री श्री राधा राधिका मन कृष्ण बलराम की। तो ये तीनों बताने के बाद भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति है वो इससे बिल्कुल हट के है। तमोगुण की भक्ति किस प्रकार से है, जैसे तमोगुण का जो भक्त होता है उसकी भक्ति में बहुत एनवी का मिश्रण होता है, प्राउड का, वायलेंस का। उसको भक्ति में इंस्पिरेशन मिलती है, वो किसी को आगे आते देख लेता है या वो देखता है कि किस प्रकार से दूसरे भक्त को नीचे लाना है, तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है उससे। रजोगुण की भक्ति फेम ऑपुलेंस, कपिल भगवान बता रहे हैं जब उसको यश मिलता है, जब उसको ऐश्वर्य मिलता है तो उसको भक्ति में आनंद आता है ना। जब कुछ लोग होते हैं उसको सलामी करने के लिए है ना, आपकी जय हो आपकी जय हो, तो उसको भक्ति से बहुत वो मिलता है। और जब कोई ऐसे सलामी देने वाला नहीं बचता तो उसको लगता है कि मतलब मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, ये भक्ति में टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, है ना। और तीसरी भक्ति है भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस। ये जो भक्ति है व्यक्ति तब करता है जब वो ऊपर वाली दोनों से परेशान हो जाता है ना, जब उसको कुछ नहीं मिला, इग्नोरेंस से भी कुछ नहीं मिला, पैशन से भी कुछ नहीं मिला, तो उसको अब मुक्ति चाहिए है ना, सब बेकार है जी, रिलीफ फ्रॉम पेन है ना, अब इससे मुक्ति चाहिए, इससे निकलना है बाहर। पर जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति को देखिए, व्यक्ति किसी प्रकार की भक्ति क्यों नहीं कर रहा है ना। एक बार रुक्मिणी कृष्ण को अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि किसने कितनी भक्ति की है। अभी हम एक्सटर्नली किसी को जज नहीं कर पाएंगे कि किसी के पास कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोजीशन है, व्यक्ति कितने अच्छे स्पिरिचुअल लेक्चर्स दे सकता है, कैसा वक्ता है, कैसा कीर्तन कर सकता है, ये चीजें नहीं बताएगी कि किस प्रकार का वो भक्त है। जब रिजल्ट आउट होगा तो पता लगेगा इसने क्या किया था, इसकी किस प्रकार की भक्ति थी। इसोलियस राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक स्टोरी सुना रहा था, एक हॉक की, एक चील की, एक बाज एक चील एक बार उड़ रहा था, और उड़ते उड़ते महाराज उस समय गंगा के तट पर बैठे हुए महाराज अपना जप कर रहे थे, तो ये जो बाज था ये उड़ता हुआ बिल्कुल नीचे आ रहा था, और जैसे बाज उड़ता है गोल गोल बिल्कुल, सिर्फ कुछ मीटर ऊपर बचा था, महाराज को देख रहे थे और महाराज जप कर रहे थे, तुरंत वो बाज पानी के अंदर घुस गया और छक 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 आवाज आने लगी उसमें से, तुरंत उसमें से उसके बाद वो बाज बाहर निकला और उसके पंजों में एक मछली थी जो तड़प रही थी, वो जाना चाहती थी अपने परिवार के पास वापस, है ना। ये मछली वैसी ही मछली थी जैसे बाकी मछलियां हैं तट पे जो रहती हैं, वैसी ही मछली थी, है ना। उसका भी अपना एक परिवार था, है ना, उसके भी अपने फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी जो डेथ के फॉर्म में जो वो बाज आया वो वहां से बाहर निकल के चले गया। वो मछली भी बहुत प्लानिंग कर रही होगी, है ना, वैलेंटाइन डे आने वाला है, खैर मछली इतनी इतना नीचा नहीं सोचती, मनुष्य आजकल और भी नीचा सोचता है, पर मछली कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रही होगी, है ना, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। तो हमें यह देखना है कि हम अपनी लाइफ में क्या, हम अपनी लाइफ में भक्ति करते हुए किसी परिस्थिति में क्या हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, क्या हम स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं, क्या हम इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी लाइफ में आती हैं या इंपॉर्टेंट हमारे को मौके मिलते हैं भक्ति के, क्या हम इसे कल के लिए तो नहीं छोड़ रहे। क्योंकि अधिकांश जब हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को पूरा बॉयल नहीं करना चाहते भक्ति में, है ना, हम ल्यूकवॉर्म ही रहना चाहते हैं, थोड़ा गर्म थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, है ना। पूरी भक्ति करेंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, जीवन में कोई आनंद ही नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी। तो ये जो भक्ति है ना, भक्त लोग हैं, भक्त लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, नित्यानंद अपीरस मनाते हैं, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, है ना। साथ में रोज डे भी मनाते हैं, चॉकलेट डे भी मनाते हैं, वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, है ना। तो ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति का जो मिश्रण है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये है ना कि हम हैं कौन, हम पूरे भक्त हैं या पूरे अभक्त हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, अनअलॉयड डिवोशन नहीं करेंगे, अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जो भी हमारी स्थिति रहेगी वो नारखे ही रहेगी, हेलिश मेंटालिटी ही रहेगी। हेलिश मेंटालिटी का मतलब क्या है, भगवान का विस्मरण होना हेलिश मेंटालिटी है, नर्क के समान बताया जाता है। कोई भी लाइफ या कोई भी परिस्थिति जब हम भगवान हमारे जीवन के केंद्र नहीं है वो नर्क के समान है। किसी भी समय है ना, किसी भी स्थान पर भगवान हमारे केंद्र नहीं है वो नर्क के समान है। एक बार एक प्रभु जी ऑफिस से जल्दी घर आ गए, माता जी ने पूछा क्या बात है आज आप जल्दी घर आ गए। माता जी हस्बैंड ने बोला, बॉस बात बहुत नाराज था, उसने बोला गो टू हेल। तो मैं घर आ गया, है ना, क्योंकि वो जो लाइफ, वो जो प्लेस है, उसका सेंटर कृष्ण नहीं है, तो वो कैसे रहता है, हेल के समान, है ना। एक आईवैक का लड़का था, उसका फोन हमने देखा, उस पे लोग नाम लिखते ना, इस किसी ना किसी भक्त का, किसी ना किसी व्यक्ति का, उस पर कोई कॉल आ रही थी, उस पर लिखा रहता हेल हेल हेल। मैं भी बहुत कंफ्यूज था, हेल से फोन आ रहा है, इसको कहां से फोन आ रहा है। मैंने पूछा कहां से कॉल आ रहा था आपको, कह रहा घर से। तो मैंने बोला आपने हेल क्यों लिखा है, कह रहा वहां पर भक्ति की कोई परिस्थिति नहीं है। कोई भी लाइफ, कोई भी प्लेस ऐसा जहां पर भक्ति केंद्र नहीं है, वो किस प्रकार से रह जाती है, एक नर्क के समान। हालांकि अगर हम भक्ति के स्क्रिप्चर्स को देखें, भागवतम, भगवत गीता, या फिर और कोई शास्त्र भी देखें, बाइबल इत्यादि, तो हमें पता लगेगा कि नर्क नाम का एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट है हेल। बाकी अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं ना? हमने डिक्शनरी में चेक किया, हम आपको बता रहे हैं हेल का मतलब अ प्लेस और स्टेट ऑफ सफरिंग, अ प्लेस और अ स्टेट, अ मेंटल स्टेट ऑफ सफरिंग, उसे क्या कहा जाता है, हेल, है ना, नर्क। तो पांच प्रकार की ऐसे नर्क होते हैं। सबसे पहले जो सफरिंग होती है, पांच प्रकार की ऐसे नर्क की सफरिंग है ना, पहला होता है ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर रीजन्स, नीचे के लोकों में जाना, अधम लोकों में, ऐसे लोकों में जहां पर व्यक्ति को सफर करना पड़ता है अपने पाप कर्मों के लिए। अगर इसका और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से मिलता है ना, किस प्रकार के नर्क हैं, किस प्रकार के जानवर पीछे भागते हैं रूरु नाम के, है ना, तो बहुत रोमांच पैदा करने वाला वो अध्याय है। तो पहली प्रकार का हेल हुआ ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर रीजन्स। सेकेंड टाइप ऑफ हेल इज ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ एंड सफरिंग। लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ में नीचे की जो योनियां हैं उसमें जाना और सफर करना, जैसा कि श्रीमद् भागवतम का ये आठवें स्कंध में मेंशन आता है, गजेंद्र कथा में, जब गजेंद्र को श्राप मिला, राजा इंद्रजीत को श्राप मिला, तो क्या बोला गया, विषतम तमिश्रम, उनको श्राप मिला कि आप हेलिश एग्जिस्टेंस में चले जाओ, है ना, गजर शरीर, हाथी के शरीर में। तो ये जो नीचे की योनियां है इसे भी हेलिश एग्जिस्टेंस बताया जाता है, इसे भी नर्क के समान बताया था, यहां पर भी बहुत सफरिंग है। थर्ड टाइप ऑफ हेल इज ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर कॉन्शियसनेस, नीचे की चेतना में चले जाना, है ना। पहला क्या था, ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर रीजन्स, सेकेंड इज लोअर स्पीसीज, थर्ड इज लोअर कॉन्शियसनेस, है ना। जब भी मेटीरियल डिजायर हमारे मन में आती है, मेटीरियल थॉट्स आती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये नारकीय चेतना है। जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज अपनी भक्ति में लगे थे, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगे थे, और बहुत ही अटैच थे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, पर उनकी आसक्ति किससे हो गई, एक हिरन से। अब हिरन से आसक्ति होने के कारण क्या हुआ, उनकी कॉन्शियसनेस नारकीय हो गई। पहले वो ये चिंता करते थे कि भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी है, अब वो उस हिरन की पेटी नीड्स को कैसे पूरा करना है इसके बारे में सोचते थे, क्या उस हिरन को घास मिली नहीं मिली, क्या उस हिरन को कोई तंग तो नहीं कर रहा, क्या वो हिरन सुरक्षित है, अब वो इसके बारे में विचार करने लगे। ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना नाकी हो गई। थर्ड इज ग्लाइडिंग डाउन टू मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में आना अपने आप में नाकी है, अपने आप में सफरिंग्स है। मेरी ख्याल से अभी तक सभी का तजुर्बा रह गया होगा कि भौतिक संसार में बहुत दुख है, और अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो बहुत कुछ आने के लिए भी है अभी। तो ये पूरा भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है। हेल का मतलब है सफरिंग, और मेटेरियल वर्ल्ड में क्या है, सिर्फ सफरिंग। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के लोक पाताल तक जितने भी लोक है वहां पर क्या मिलता है, सिर्फ सफरिंग्स। वही सफरिंग्स अलग अलग बेस में, अलग अलग शेप में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग कलर्स में, पर सफरिंग्स मिलती रहती है। जैसे अगर आप किसी ढाबे में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां पर आलू देखें, गोभी देखें, मसाले देखें, है ना, आप उनसे पूछोगे कि इंग्रेडिएंट्स का आप क्या करते हैं, वो बोलेगा आलू गोभी मिला के उसमें मसाले वगैरह डाल के हम आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, या फिर कभी कभी आलू की सब्जी बना देंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिला के क्या बनेगा, डिश बनेगी, क्योंकि भोजनालय में आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। उसी प्रकार से भौतिक संसार क्या है, दुखाले। और यहाँ के इंग्रेडिएंट्स क्या है? हाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ना ये इंग्रेडिएंट्स है यहाँ के। और इसको मिला के क्या बनता है? पुरुष बनता है, स्त्री बनती है, बिल्डिंग बनती है, गाड़ियां बनती हैं, घर बनते हैं, और हम इसी में ही इंजॉय करने के सोचते हैं। और ये सब बने किस लिए? ये पूरा इंग्रेडिएंट हमें दुख देने के लिए, ये सिर्फ हमें दुख देने के लिए ही बनाए गए हैं, हमें सफरिंग देने के लिए, ताकि हम भौतिक संसार से बाहर जाएं, यहां पर सफरिंग को रियलाइज करें और यहां से बाहर जाएं हम लोग। इसलिए कभी एक पुरुष दूसरे पुरुष को तंग करता है, एक स्त्री दूसरी स्त्री को तंग करती है, एक पुरुष किसी स्त्री को तंग करता है, स्त्री किसी पुरुष को तंग करती है, हर कोई किसी न किसी को परेशान कर रहा है, क्योंकि इंग्रेडिएंट बनाए इसलिए गए हैं। तो चार प्रकार की अब डिस्कस किया हमने, ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर रीजन्स, ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर स्पीशीज, ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर कॉन्शियसनेस, ग्लाइडिंग डाउन टू मटेरियल वर्ल्ड। इसके बाद जो पांचवा है ना, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बाद भी, आध्यात्मिक जीवन के आने के बाद भी लोग क्या करते हैं? इम्पर्सनलिज्म का जो स्कूल है इसको अपना लेते हैं। निराकार, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, केवल मुक्ति के पीछे भागने वाले। तो ये भी किस प्रकार से है? ये भी हेलिश है, ग्लाइडिंग डाउन फ्रॉम ब्रह्म ज्योति टू मटेरियल वर्ल्ड। जो भी ब्रह्म ज्योति में जाता है वहां पर खुश नहीं रह पाता, क्योंकि सेटल नहीं है वहां पर। सेटल कैसे होगा? उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। जब तक उसको भगवान का सानिध्य, भगवान का संग प्राप्त नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखिए, जीव का जो स्वभाव, जो जीव है वो सच्चिद आनंद है, सच्चिद शांति नहीं है। हम क्या सोचते हैं? जीव सच्चिद शांति है, इसलिए हम शांति के पीछे भागते रहते हैं, ऐसी चीजें ढूंढते हैं, ऐसे कारण ढूंढते हैं शांति मिलेगी इस तरीके से। ओम शांति, भक्ति करने के बाद भी कई ऐसे टीवी सीरियल्स आते हैं, इसमें शांति के बारे में बहुत प्रवचन होता है, बहुत सुनना पसंद करते हैं उसको, किसी तरीके से मन को शांति मिले, है ना। पर अगर आप भागवतम देखेंगे तो भागवतम में कोई भी भक्त ऐसे नहीं आए जिन्होंने शांतिपूर्वक भक्ति कर ली है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर आया, पर अगर आप ये शांति के पीछे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको शांति मिलेगी और ना आपको आनंद मिलने वाला है। तो जब तक हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस, जो पूरी तरीके से अनन्य भक्ति के मार्ग को नहीं अपना लेंगे, तब तक हम कभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे, आनंद में नहीं रह पाएंगे। हो सकता है अभी हम इस स्तर पर नहीं है, पर हमें अपने लेवल को उस स्तर पर लाना है। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है टू अट्रैक्ट लॉर्ड टू आर सिंसियर ईगर डिजायर टू सर्व। भगवान को अट्रैक्ट करना, जो हमारी सिंसियर ईगर डिजायर है सेवा करने की, उसके प्रति। भगवान को देखिए, हमारी कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, भगवान को हमारी कोई पैसा नहीं चाहिए, भगवान को हमारी सोसाइटी में कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं चाहिए। भगवान को क्या देखना है? भगवान को सिर्फ एक स्वीटनेस देखनी है, एक लॉन्गिंग देखनी है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए कितने आतुर हैं, कितने इच्छुक हैं हम भगवान की सेवा करने के लिए। तो श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त थे रामचंद्र देव, ये भी गजपति राजा थे रामचंद्र देव, और उनके पिता का नाम था गोपीनाथ देव। ये इतने पावरफुल राजा थे कि उस समय मुसलमान शासन होते हुए भी ये कई बार जगन्नाथ मंदिर की रक्षा कर चुके थे, ब्राह्मणों की रक्षा कर चुके थे। पर एक बार क्या हुआ, युद्ध करते हुए जो रामचंद्र देव है वो हार गए और उनको बंदी बनाकर कैद कर दिया गया। अब जब उनको कैद किया गया, उनके पास दो प्रपोजल रखे गए, है ना। पहले लोग क्या क्या करते थे, जो भी राजा को कैद किया जाता था उसको रिहा कर देते थे एक शर्त पर, कि उसको मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। पर जब रामचंद्र देव को प्रपोजल दिया गया तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं बन सकता। पर बाद में रामचंद्र देव ने सोचा कि अगर मैं नहीं ये धर्म स्वीकार करूंगा, इस्लाम धर्म, तो ये लोग क्या करेंगे, जगन्नाथपुरी पर आक्रमण करेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे, वहां के जो पुजारी हैं उनको मारेंगे। सो एज अ सर्विस, भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए रामचंद्र देव ने अपने धर्म को त्याग कर क्या किया, इस्लाम धर्म में आ गए। अब जब रामचंद्र देव पहुंचे अपने घर वापस, है ना, तो उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए, है ना, एंट्री ओनली फॉर हिंदूज, एंट्री प्रोहिबिटेड, आप अंदर नहीं घुस सकते। जब वो अपने घर में जाने की कोशिश की, उन्होंने, उनकी भार्या ने और उनके बच्चों ने उनको स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, आप जाइए ना, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये सब किस लिए किया था रामचंद्र देव ने? उन्हीं ब्राह्मणों को बचाने के लिए, उसी मंदिर को बचाने के लिए। पर हर किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया बिल्कुल। अब रामचंद्र देव के पास भी बहुत ऑप्शंस थी, है ना। सबसे पहले उनके पास ये ऑप्शन थी कि इस्लाम धर्म स्वीकार करते ही ना, हिंदू बने रहते और मरने देते ब्राह्मणों को, टूटने देते मंदिर, क्या फर्क पड़ता। सेकेंड ऑप्शन क्या थी, अब वो भक्त लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है अब रिवेंज लेते कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, हैं? अब तुम ही मेरी सहायता नहीं करे तो मैं तुम्हारे को सबक सिखाऊंगा। पर रामचंद्र देव ने इसमें से कोई भी चीज नहीं अपनाई। रामचंद्र देव ने क्या किया, अब उन्होंने किसी को भी डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। जब रात को सब सो जाते थे तो वो दरवाजे पर आते थे, सिंह द्वार पर, और रोते थे, पुकारते थे भगवान को, है ना, भगवान से विनम्र प्रार्थना करते थे कि मैं कितना नीच हूं, मैं कितना अधम हूं कि मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा, मुझे यह मौका भी नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं आपकी सेवा प्राप्त कर सकूं। क्योंकि उस समय क्या था कि राजा को मौका मिलता था वो रथ यात्रा के आगे झाड़ू मारते थे, जगन्नाथ मंदिर के आगे ऊपर एक दीप जलाया जाता था, महादीप। जब वो दीप जलाया जाता था तो उस समय प्रार्थना की जाती थी जगन्नाथ से कि जो हमारे राजा है रामचंद्र देव, उनकी रक्षा कीजिए। अब वो प्रार्थना भी बंद कर दी गई थी। तो ये बहुत दुखी थे, रोते थे। जब ये इतना रोते थे जगन्नाथ जी से उनका रोना बर्दाश्त नहीं हो पाता था। हालांकि कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, उनके मित्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे ना, सारे ब्राह्मण जिन जिन के लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया, हर किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पर भगवान से उनका ये रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान रोज रात को अपना सिंहासन, स्वर्ण जलित सिंहासन छोड़कर बाहर आते थे रामचंद्र देव को दर्शन देने के लिए। और कई दिन ऐसे हो गए, रोज भगवान दर्शन देते थे, रोज भगवान दर्शन देते थे। पुजारी लोग बिल्कुल परेशान थे। जब भी वो सुबह पट खोलते थे, भगवान के दर्शन खोलते थे, सारे गहने सिंह द्वार तक फैले होते थे, सारे पुष्प बिखरे होते थे, भगवान के कपड़े बिखरे होते थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन भगवान ने वहां के जो एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे, उनके स्वप्न में आके बोला कि आपकी मैनेजमेंट से मैं खुश नहीं हूं, आपने जो डिसीजन लिया है रामचंद्र देव के प्रति ये ठीक डिसीजन नहीं लिया, रामचंद्र देव मेरे शुद्ध भक्त हैं। तो जब इस प्रकार की, जब उस प्रीस्ट के स्वप्न में आके जगन्नाथ जी ने बताया, तो फिर भगवान ने, क्योंकि जो प्रीस्ट थे वहां के, राजा जो थे वहां के, जो हेड थे, उन्होंने सोचा कि रोज भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे इसको बाहर, तो रोज क्या होगा, भगवान की गहने बिखरे होंगे। तो उन्होंने सिंह द्वार पर एक जगन्नाथ जी की स्थापना कर दी, पतित पावन जगन्नाथ। तो जब भी कोई भक्त शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है, अनन्य भक्ति करने का प्रयास करता है, हो सकता है उसको पूरा समाज रिजेक्ट कर दे, ना? हो सकता है एक्सटर्नल जजमेंट से लगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल बेकार है, किसी काम का ही नहीं है, गुड फॉर नथिंग। पर भगवान की आईस में उसकी क्या कैलकुलेशन है, भगवान उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, यह डिपेंड करता है। हम लोग उसको क्या समझ रहे हैं, यह डिपेंड नहीं करता कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। हमारा जजमेंट कितना अच्छा है वो हम खुद भी जानते हैं, हमारा जजमेंट कितना अच्छा है। हम अपने लिए एक ठीक डिसीजन नहीं ले सकते, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हम ठीक डिसीजन लेंगे। तो इतने बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी सेवाएं, बड़े बड़े लेक्चर, कोई भी कुछ भी क्यों नहीं है, ये सारी वंडरफुल सर्विसेज जो भी हैं, ये तभी तक हैं जब तक जो सेवा करने वाला भक्त है वो एक सही चेतना में, एक विनम्र चेतना में, एक अनन्य भाव की चेतना में भगवान की सेवा कर सके। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्या उस भक्त का, त्रिनादपि सुनिचेन का एटीट्यूड है? अगर हम बाहर मेटेरियल वर्ल्ड में भी जाएंगे तो कई मैनेजमेंट गुरुस हैं, मैनेजमेंट लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी ABCD है, अल्फाबेट्स हैं, उनको क्या करते हैं, नंबरिंग में डाल देते हैं, A for 1, B मतलब 2, C मतलब 3, है ना। उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू करते हैं एफर्ट, है ना। एफर्ट का मतलब ई को कैलकुलेट करते हैं कितना नंबर, एफ कैलकुलेट करते हैं कितना नंबर, इसका जो सम टोटल करते हैं तो 72%। ऐसे कई वर्ड से कैलकुलेट करते हैं, पर जब एटीट्यूड शब्द को लिया जाता है, एटीट्यूड, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, जब इस एटीट्यूड वर्ड को हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 100% आता है। अगर हम 100% सक्सेस चाहते हैं, अगर हम 100% भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो एटीट्यूड मैटर करता है। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया ठीक नहीं है सेवा के प्रति, तो हो सकता है हम बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्लानिंग बना रहे हो, पर वो किस निरर्थक है, उसका कोई ठीक रिजल्ट नहीं निकल के आ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम लीला में देखें तो चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की अपनी, और चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुलाया तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया श्रीवास पंडित को। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बुला के बोला कि श्रीवास, तुम्हें याद है देवानंद पंडित ने तुम्हारे प्रति अपराध किया था, जो भी उसने पीड़ा तुम्हें पहुंचाई थी वो पीड़ा जितनी तुम्हें पहुंची थी उतनी पीड़ा वो मुझे भी पहुंची थी। ये जो देवानंद पंडित है इसका भक्ति के प्रति कोई भी एक्सेस नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध करता है तो वो भक्त के प्रति अपराध करता है, तो इनडायरेक्टली वो किसके प्रति अपराध करता है? भगवान के प्रति। और जब वो भक्तों की सेवा करता है तो किसकी सेवा करता है? भगवान की सेवा करता है। एक श्री प्रभुपाद के डिसाइपल माता जी थे, वो अफ्रीका में जब प्रचार कर रहे थे तो अफ्रीका में उस समय एक रिवोल्यूशन आ रहा था, है ना, पूरी गवर्नमेंट सरकार बदल रही थी और अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही थी कि सभी सिटीजन्स को, अमेरिकन सिटीजन्स को बाहर निकलो। जब उन माता जी के पास एक कॉल आई उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैं किसी प्रकार की मृत्यु से नहीं डरती, मैं किसी प्रकार से भयभीत नहीं हूं, मुझे सिर्फ एक ही प्रकार का डर है कि मेरे से भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध ना हो जाए। और बहुत ही बोल्डली माता जी उस सिचुएशन में भी प्रचार करती रही। तो हुआ क्या, उस समय सभी भक्तों को पकड़ लिया गया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो वुमेन्स हैं वो जा सकती हैं ना, जो मेन हैं उनको एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया, उनको शूट करने वाले थे। ये माता जी भागते हुए गई और जो लोग थे जो गोली चलाने वाले थे उनकी बंदूकों को पकड़ लिया कि आप मेरे देखते देखते ये नहीं कर सकते। उस माता जी को भी पता था, उन माता जी को कि वो क्या कर सकती है, एक तो वुमेन, ऊपर से इतनी सारी उनकी आर्मी, सबके पास बंदूकें हैं, वो क्या कर पाएंगे। पर फिर भी एक भक्त को मरता देखकर अपनी आंखों के सामने रिलैक्स बैठे रहना, उन्होंने क्या सोचा कि ये अपराध है, मरना ज्यादा बेटर है इसके लिए। और उनको पता था उनको मार दिया जाएगा और उनको शूट कर दिया गया, पर वैष्णव के प्रति अपराध ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब अपनी महाप्रकाश लीला कंटिन्यू करते गए, श्रीवास के बाद वो गंगादास जी से मिले। गंगादास को उन्होंने बोला, जानते हो गंगादास, कई समय पहले जब मुस्लिम राजा तुम्हारे पीछे तुम्हें बंदी बनाने के लिए भाग रहा था और तुम रात को भागे अपने परिवार के साथ और तुम मेरे से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान अपने इन भक्तों की रक्षा करो, उस समय रात को सारे नाव वाले सो रहे थे, कोई भी नहीं जाग रहा था, सब सो रहे थे, पर अचानक पता नहीं कहीं से एक नाव वाला आ गया जिसने तुम्हें नदी पार करवाई थी, क्या तुम्हें याद है गंगादास? उन्होंने बोला हां मुझे याद है ना, वो नाव वाला मैं था। चैतन्य महाप्रभु कह रहे वो नाव वाला, वो बोटमैन मैं था, मैं था, मैं पर्सनली इनकार्नेट किया था तुम्हारी मदद करने के लिए ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना, जैसे यहां पर गजेंद्र की स्थिति में, हालांकि गजेंद्र भगवान स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग डिवोशन बता रहे हैं, पर साथ में यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। उनके अंदर ये रिग्रेट भी है कि भगवान से कुछ और मांग रहे हैं भौतिक शरीर को बचाने के लिए, पर भक्तों का एकमात्र सहारा कौन है? भगवान। तो किसी भी परिस्थिति में भक्त कहां जाते हैं? भगवान की तरफ जाते हैं, दे अप्रोच कृष्ण। इस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, इफ वी सिंसियरली प्रे टू गॉड एंड चैंट हिज नेम्स वी आर प्रोटेक्टेड। अगर हम भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करें और भगवान के नाम का जप करें, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कौन के प्रति जान ही नाम एक भक्त अपरंशति। तो हमें देखिए, हमारे पास चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं, पर हमें एक चीज पे बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि क्या मैं सिंसियरली ट्राई कर रहा हूं भक्ति करने के लिए। हालांकि हमारे पास वरी करने के लिए, चिंता के लिए बहुत इश्यूज हैं, पर हम कितना सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं ये हमारा मुख्य चिंता का विषय रहना चाहिए। जब हमारा ये मुख्य चिंता का विषय रहेगा तो बाकी चिंताएं हमें सताएंगी नहीं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये भक्तों ने शुद्ध भक्ति को, अनन्य भक्ति को दर्शाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने कोला बेचा श्रीधर को बुलाया, कोला बेचा श्रीधर को बोला मांगो,
मांगो आप क्या चाहिए, आपको क्या डिजायर है आपकी। सबसे पहले तो भगवान ने बोला बच्चे श्रीधर को अपने कृष्ण पांव के दर्शन करवाए, उसके बाद बोला मांगो बेनेडिक्शन मांगो। बोला बच्चे श्रीधर ने बोला मैं तो बिजनेसमैन नहीं, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, कि मैंने आपकी सेवा की, आप सेवा के बदले मुझे क्या चाहिए, एक्सचेंज में कुछ चाहिए, मैं तो बिजनेसमैन नहीं। पर फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये ब्लेसिंग दीजिए कि हर जन्म में आप निमाई के रूप में जिस प्रकार से मेरे पास आते थे मेरी शॉप पर दुकान पर और बार्गेनिंग करते थे, उसी प्रकार से आप बार बार आए और बार बार उसी प्रकार से बार्गेनिंग करते। तो कोला बेचा श्रीधर के सामने देखिए, अगर हमारे सामने स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु आए और हमारे को बोले कुछ मांगो है ना, तो भगवान को बोलेंगे कि थोड़ी देर रुको, लिख दो एक मिनट, लेट मी राइट, लेट मी थिंक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, टॉपिक है, मुझे लिखने दो पहले है ना, सब कुछ लिखने दो। पर कोला बेचा श्रीधर की कोई इच्छा थी नहीं। देखिए कभी भी अचानक हमारे सामने हो सकता है, भगवान हमारे सामने इंस्टेंटली आ जाए, बोले क्या चाहिए आपको, बोलो मैं सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, कुछ हमारे पास होगा नहीं बोलने के लिए। कोला बेचा श्रीधर ने सिर्फ एक ही अपनी डिजायर व्यक्त की है ना, भगवान के दर्शन करने की। हरिदास ठाकुर को बोला चैतन्य महापुरुष महाप्रकाश लीला में, मांगो क्या चाहिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये बता ब्लेसिंग दीजिए, अगर आप ब्लेस करना चाहते हैं कुछ देना चाहते हैं आप ना, तो ये ब्लेसिंग दीजिए कि मुझे वैष्णवों की सेवा का मौका मिले। मुरारी गुप्त को महाप्रकाश लीला में चैतन्य महापुरुष ने अपने रामचंद्र फॉर्म के दर्शन करवाए, सीता राम लक्ष्मण दर्शन करवाए और बोला कि मांगो, ask for something, कुछ मांगो। उन्होंने बोला कि भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर अगर आप खुश हैं मुझे कुछ देकर तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं डिवोशनल सर्विस, भक्तों की सेवा और आपकी सेवा मैं कभी भी नहीं छोड़ू, कभी भी मैं आपको ना भूलू। तो इसे अनन्य भक्ति कहा जाता है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस आएंगे लाइफ में, जब हमारे पास बहुत अपनी डिमांड्स को डिजायर को, क्योंकि भगवान हर प्रकार के हमारे को चीजें दिखाते हैं ना। कभी कभी जीवन में दुख आएंगे, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि लगेगा कि बस बन ही गया करोड़पति। कई ऐसे भक्त अपने रियलाइजेशन बताते हैं, जब वो भक्ति करने लगे और उन्होंने फैसला कर दिया मैं भक्ति में सीरियस हूंगा, गंभीर हूंगा ना, उसी समय एक जॉब की लेटर आ गई, बहुत अच्छी ऑफर मिल गई उनको, आओ जॉब करो है ना। ऐसा बिजनेस जो कई सालों से चला ही नहीं था कभी है ना, जब निश्चित कर ले कि भगवान अगर नहीं चलेगा तो मैं पूरी तरीके से आपको समर्पित कर दूंगा, पता नहीं कैसे वो बिजनेस चलने लग गया, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी है ना। तो वो एक लालच आ जाता है। अब व्यक्ति किसको ऑप्ट करेगा है ना, धनम जनम सुंदरी या फिर अनन्य भक्ति भगवान की, किसको ऑप्ट करेगा व्यक्ति, ये उसका टेस्टिंग पॉइंट है। जब भगवान जब चैतन्य महाप्रभु से महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो शिवास जी गए चैतन्य महाप्रभु के पास, उन्होंने बोला मुकुंद, मुकुंद भी आपके भक्त हैं, इन पर कृपा कीजिए आप। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुकुंद पर मैं कभी भी कृपा नहीं करूंगा है ना, वो दोगला है मुकुंद है ना, जब मेरे सामने आता है तो मेरा गुणगान करता है ना, और मेरे पीछे से क्या करता है, मुझे लाठियों से मारता है। कैसे लाठियों से मारता है, क्योंकि वो मेरे फॉर्म को काट देता है। वो कहता है भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, भगवान के कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई रूप नहीं है ना? जाओ मुकुंद को जाकर बोल दो कि 10 मिलियन वर्ड्स लगेंगे उसको है ना, 10 मिलियन जन्म लगेंगे उसको जब उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। जब मुकुंद ने ये सुना तो मुकुंद ने नाचना शुरू कर दिया, 10 मिलियन वर्ड्स नाचना शुरू कर दिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, 10 मिलियन जन्मों के बाद भगवान मुझे दर्शन देंगे, इससे खुशी की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सिंसियरिटी देखी, ये डिजायर देखी मुकुंद के, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ना? कि मुकुंद जैसे भी क्यों नहीं थे पर उनकी सेवा का प्रति जो उनका भाव था वो बहुत उच्च था। तो पर देखिए हमारे जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं, हम लोग अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को लूज कर देते हैं, भक्तों के प्रति जो हमारा विश्वास है वो टूट जाता है ना? अगर हमारी छोटी छोटी इच्छा पूरी नहीं होती, और कई लोग ऐसे आते हैं मंदिर में आते हैं सेवा करने आते हैं, छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो पाई उसकी है ना, तो सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी भक्ति हमने सोचा था बहुत अच्छी है, भक्ति करके बहुत प्रगति होगी है ना, तो पर कुछ है नहीं, ऐसा समझ नहीं आ रहा भगवान है या नहीं है ना। एक भक्त से मिले, उनको बोला कि आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, वो कह रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं तो वो कह रहे हैं कि मैं तो हवा में गोली चला रहा हूं, देखो कबूतर मरेगा नहीं मरेगा, है ना, विश्वास ही नहीं है बिल्कुल, है ना, कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं राइट प्रोसेस पर हूं, मुझे भक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसे लोगों को सच में कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो फेथ, दे हैव नो फेथ इन कृष्णा। उनको भगवान पर, भगवान की भक्ति पर, भगवान के भक्तों पर, किसी पर भी विश्वास ही नहीं है, केवल अपने एफर्ट से विश्वास रखने वाले। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में, जब तक कोई भी हमारे जीवन में होप रहेगी ना, कोई भी आशा रहेगी, जिस प्रकार से वासुदेव विप्र थे, उनके पूरे शरीर पर कोड़ था ना, हमारे को एक मच्छर काटता है तो हम भगवान को बोलते हैं भगवान क्या है ये, है ना, मच्छर मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा, है ना, एक मच्छर काटता है ना, तो हमें लगता है ये मच्छर भक्ति नहीं करने दे रहा। वासुदेव विप्र के पूरे शरीर पर कोड़ था और कीड़े खाते थे, जब वो कीड़ा नीचे गिर जाता था वो कीड़े को उठाकर दोबारा जख्म पे डाल देते थे कि इसको तो कम से कम इसकी डाइट पूरी मिले। इतना कंपैशन था उनके अंदर, इतनी करुणा थी उनके अंदर वासुदेव विप्र में। जब उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर पे आए हैं, वो भागते हुए पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे वहां से, चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे, वासुदेव विप्र इतने दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान को ब्लेम नहीं किया। जिस प्रकार से रामचंद्र देव ने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया कि भगवान मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, है ना, उसी प्रकार से वासुदेव विप्र ने कभी भगवान को कंप्लेंट नहीं किया, ब्लेम नहीं किया। वासुदेव विप्र ने क्या किया, आई एम सो सिंफुल लॉर्ड बट यू आर सो मर्सीफुल, मैं इतना पापी हूं, आप बहुत कृपालु हैं भगवान। जब चैतन्य महापुर उनकी फीलिंग्स देखी तो चैतन्य महापुर तुरंत आए उनके पास वापस और चैतन्य महापुर उनको गले लगा लिया। तो अगर हम भगवान की स्पेशल कृपा चाहते हैं, स्पेशल मर्सी चाहते हैं, तो हमारे को स्पेशल एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, स्पेशल सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अगर डे टू डे लाइफ में जैसे नॉर्मल चलता जा रहा है, जब तक अच्छा हो रहा है जीवन में तब तक भगवान की कृपा है, जब अच्छा नहीं हो रहा जीवन में तो जी मैं मंदिर नहीं आ सकता, भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है ना। कई लोगों के घर में किसी का देहांत हो जाता है ना, लोग भगवान को गाली निकालते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है ना, जैसे भगवान को कोई काम नहीं रह गया, भगवान यही करने के लिए आए यहां पर, है ना। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे गजेंद्र यहां पर बता रहे हैं कि अनअलॉयड डिवोशन से, अनन्य भक्ति से 1% भी, 1 डिग्री भी अगर कुछ भी कम रहेगा तो एक नारकीय जीवन की तरह है, वो केवल हमें दुख देगा। हम कभी भी खुशी से, आनंद से भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, अगर अनन्य भक्ति नहीं करेंगे। तो जीवन में जिस प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ भी स्टडी ले लीजिए आप स्पिरिचुअल लाइफ की, हर भक्त के जीवन में किसी ना किसी प्रकार के संकट आए, संकट है परीक्षा, और परीक्षा यह बताती है कि व्यक्ति कितना एक्सपर्ट है, परीक्षा यह दिखाती है कि व्यक्ति कितना स्किलफुल है, कितना होशियार है। भक्त के जीवन में जब ये परीक्षाएं आती है तो ये दिखाती है कि भक्त कितना सीरियस है भक्ति। छोटी सी प्रॉब्लम आई, हवा के छोटे की तरह गायब हो गया, इसे भक्ति नहीं कहा जाता। तो जो हमने शुरू में जो हॉप की स्टोरी, जो बाज का जो स्टोरी हमने डिस्कस किया था, जो महाराज बता रहे थे, जब वो बाज जो था उस मछली को पकड़कर ले गया, पहला कारण यह था मछली को पकड़ के ले गया क्योंकि वो मछली बिल्कुल आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। पर दूसरा रीजन भी इसका एक है, डीप रीजन। वो दूसरा रीजन यह है कि वो मछली पानी के बिल्कुल ऊपर ऊपर तैर रही थी, बिल्कुल तट पर। अगर वो मछली पानी के अंदर तैर रही होती, समुद्र के अंदर तैर रही होती, तो क्या वो बाज पकड़ पाता उस मछली को? नहीं पकड़ पाता। तो हम भी जब भक्ति करते हैं ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं बस, है ना। शुद्ध भक्ति के तरफ भक्ति का सागर है, उसकी डेप्थ में ध्यान से करते हैं, जब हम भक्ति के सागर के डेप्थ में चले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दिक्कत कुछ नहीं बचेगा, नो मोर वॉइस। तो भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि जीव का स्वरूप, जीव जो है सच्चित आनंद है, सच्चित शांति नहीं है। जीवन में शांति ढूंढना बंद करें और भगवान की सेवा करने
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की बताए और प्रेमानंदे।